रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। काकभूषण जी महाराज अपना चरित्र सुना रहे हैं गरुड़ जी को कि पहले में क्या था। अयोध्या का एक शूद्र कुल में पैदा हुआ बहुत दरिद्री व्यक्ति था, किसी कलयुग की बात है। उस कलयुग का प्रभाव बताया कि कलयुग में क्या क्या होता है, ये सब बता करके और फिर बताते आगे कि देखो बिहगेश हे पक्षीराज, अयोध्या में मैं उस कलयुग के अंदर बहुत वर्षों तक रहा, फिर अकाल पड़ गया तो मैं विदेश रवाना हो गया और फिर मैं उज्जैनी आ गया। देखिए ये अंदर ही अंदर सोचिए, वैष्णव नगरी में जन्म लिया और शैव नगरी में आए। भगवान शैव और वैष्णव, ये तुलसीदास जी शैव और वैष्णव कितना बढ़िया मिलान करते हैं। मैं बड़ा दीन था, गरीब था, दरिद्री था, दुखारी था, उज्जैनी नगरी में गया। वहां पर मैं कुछ पैसा कमाने लगा, पेट भरे उतना कुछ पैसा मिलने लगा। उज्जैनी के अंदर महाकालेश्वर भगवान शंकर विराजमान, मैं भी शंकर जी की पूजा करने लगा। अयोध्या में राम जी की पूजा नहीं करता था, उज्जैनी में आया, लोगों ने कहा कि देखो शंभू की पूजा करो, शंकर भगवान की पूजा करो, द्रव्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो मैंने शंकर भगवान की पूजा चालू कर दी। शंकर भगवान के मंदिर में एक बहुत अच्छे ब्राह्मण रहते थे, वैदिक ब्राह्मण, बिल्कुल वेद के अनुसार चलने वाले थे। उनका काम यही था कि सदा शिवजी की पूजा करना, दूसरा कोई उनके काम नहीं। बड़े सीधे साधे सरल वो ब्राह्मण देवता, परमात्म तत्व को जानने वाले थे। मुखमंडल पर अपार शांति छाई हुई थी। वे भगवान शंकर के उपासक तो थे, परंतु कभी उन्होंने भगवान विष्णु की आलोचना नहीं की कि भगवान विष्णु कुछ नहीं है, हमारे शंकर जी कितने अच्छे हैं, खुद देखो अपने कम कपड़ा पहनते हैं लेकिन भक्तों को हमारे शंकर भगवान क्या देते हैं। ये विष्णु भगवान तो स्वयं ने मुकुट भी पहन लिया, कुंडल भी पहन लिया, मणि भी धारण कर ली, भुजबंद धारण कर लिए, हाथ में कड़े पहन लिए, अंगूठियां पहन ली, करधनी पहन ली, पैरों में नूपुर पहन लिए, इतने आभूषणों से लदे हुए, बेचारे भक्तों को कुछ भी नहीं देते। ऐसे है वे भगवान विष्णु की निंदा नहीं करते थे। मैं उनके पास गया, ब्राह्मण देवता के पास, मेरे मन में कपट था, वो कपट मैंने जाहिर तो किया नहीं। उनके पास गया, उनके पैर दबाया और कहा महाराज मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, पेट भराई के लिए उज्जैनी में आया हूँ, कोई आप ऐसी कृपा करो कि मुझे अच्छा द्रव्य मिल जाए, बड़ा गरीब हूँ, दीन हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, ऐसे ऐसे मैंने उनको ठगते ठगते नम्रता के वचन कहे। और देखो गरुड़ जी महाराज, जिसके हृदय में कपट नहीं होता वो दूसरे के कपट को क्यों पहचानेगा। आपके अंदर कपट है ये मैं कब पहचानूंगा, जब मेरे अंदर कपट है तब मुझे आपका कपट दिखेगा, नहीं दिखेगा ही नहीं। अपना जैसा हृदय होता है वैसा ही दूसरों का दिखता है। उन्होंने मुझे बढ़ाई, बढ़ा सुशील है जी, तो वो मेरे पर राजी हो गए। बाहर का व्यवहार देखा, क्योंकि उनके पास कपट था नहीं, तो बड़े प्रेम से कहा, आओ बेटा हमारे पास पढ़ो, हम तुमको भगवान शंकर का मंत्र सिखा देते हैं, उस मंत्र का तुम जाप करोगे तो हम खूब मालामाल हो जाओगे। लो मंत्र दिया मुझे, शंभु मंत्र मोहि द्विज वर देना, शुभ उपदेश विविध विधि के ना, जपे उ मंत्र शिव मंदिर जाई। उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया। अब लोग देखते हैं क्या मंत्र दिया होगा, कैसा मंत्र दिया होगा, हमको मिल जाए तो हम भी करें। देखो ये तो प्रकरण चल रहा है ना, ये प्रकरण बहुत विचित्र प्रकरण है। ये तंत्र मंत्र में फंसना नहीं चाहिए, ये बताने के लिए मंत्र है। आदमी किन्हीं मंत्रों का तो जाप करता है, परंतु अपने अंदर से मन को जो है, मन के कपट को दूर नहीं करता, तो उसकी यही दशा होती है। आगे बता रहे, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, और हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। शंकर भगवान का आजकल मंत्र जपता हूं, मामूली हूं क्या, बड़ा अभिमान आ गया मेरे अंदर। और ऊपर से गुरु जी के सामने देखो कैसा नम्र रहता था, तो ये दम्भ हो रहा गया, बढ़ता गया। इधर जो है मंत्र का जाप करता रहा तो इधर दम्भ हो रहा, अहंकार भी बढ़ता गया। इसलिए भाई इस साधना में एक तरफ चाहे ये दम्भ अहंकार दिखावटीपना असाधन ये हमारा नष्ट होना चाहिए, ये तो मैंने बढ़ा लिया। देखो देखो गरुड़ जी महाराज, मैं एक दुष्ट व्यक्ति, जन्म जन्मांतर के मैल से भरा हुआ, नीचे कुल में जन्म लिया हुआ, और एक अच्छे ब्राह्मण को मैंने देखा, उस ब्राह्मण से मैंने मंत्र लिया, और फिर मंत्र लेने के बाद जो भी कोई मुझे भगवान विष्णु का भगत दिखाए तो उनसे जलन रखता था, घृणा करता था, अरे तुम वैष्णव हो, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मन में विष्णु भगवान के साथ द्रोह करने का भाव बढ़ता गया। और गुरुजी को मैंने बताया नहीं, यदि मैं गुरुजी को ये बात बताता तो गुरुजी शायद मुझे समझा देते। एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव जाने क्या बात है, मुझे ये वैष्णव लोग अच्छे नहीं लगते, विष्णु भी है, विष्णु के साथ भी। अरे बेटा ऐसा कभी मत करना, भूल करके भी जो भगवान शंकर का जप करने वाला होता है वो तो विष्णु का शंकर से भी ज्यादा आदर करे, तब वो शैव होता है। ऐसे ही जो वैष्णव होता है वो विष्णु से ज्यादा शिव का आदर करे तब वो वैष्णव होता है। मुझे बहुत समझाया तो मैंने गुरुजी पर ही क्रोध किया, ये काय के शंकर भगवान का मंत्र दिया और शंकर भगवान में निष्ठा ही नहीं उनकी, ऐसी बात मुझे बोलते हैं कि विष्णु के साथ द्रोह मत करो, मेरी निष्ठा ही नहीं है, मुझे वैष्णव अच्छे लगते ही नहीं है, विष्णु अच्छा लगता ही नहीं है। मेरे मन में क्रोध आ गया। देखो गरुड़ जी महाराज, दम्भी आदमी को कोई अच्छी बात अच्छी लगती है क्या, नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बुला करके बड़ी नीति की बात सिखाई और कहा कि देखो बेटा, शिवजी की सेवा का फल लेना हो तो तुमको भगवान राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। भगवान राम के चरणों में प्रेम करोगे तो शिवजी की कृपा मिल जाएगी। और तुमको ये देखना चाहिए कि भगवान शंकर स्वयं राम जी की पूजा करते हैं, भगवान शंकर ध्यान करते हैं और विधाता ब्रह्मा जी भी करते हैं, फिर तुम कौन सी जगह हो भाई, मामूली से प्राणी हो। ब्रह्मा जिनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, शिवजी जिनका भजन करते हैं, जिनके चरणों में अनुराग रखते हैं, तुम उन शिवजी के साथ, उन विष्णु के साथ, राम जी के साथ द्रोह रखते हो, ये तुम्हारा कोई पाप का छांटा उदित हो गया भाई, तुम्हारा दुर्भाग्य पैदा हो गया। अब मेरे गुरुजी ने जब ये बात कही कि तुम भगवान विष्णु की सेवा करो, तो हे खगपति गरुड़ जी महाराज, मेरे हृदय में दाह पैदा हो गया। गुरुजी मुझे बुरे लगने लगे। क्यों? क्योंकि मैं अधम जाति का था। अयोग्य को कोई विद्या मिल जाती है तो वो विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य। जो दुष्ट आदमी होता है उसको विद्या मिले तो लड़ाई झगड़ा करेगा, विद्या विवादा है। आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो। है कोई मेरे समान जानकार? मेरे समान कौन जानता? मैं सब शास्त्रों को जानता हूं। ऐसे वो हल्ला करता रहता है। धनम मदाय, पैसा आ जाए तो घमंड में किसी को देखता ही नहीं। और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, कोई शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए तो दूसरे को दुखी करना, ये होती है दुष्ट व्यक्ति की स्वाभाविक पहचान। मेरे मन के अंदर इतनी गुरुजी के प्रति जलन पैदा हुई, रात दिन में गुरुजी से चिढ़ता रहता था। गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया हो जैसे सांप को दूध पिला दिया हो। वास्तव में तो गुरुजी को तो मुझे निकाल देना चाहिए था। गुरुजी मेरा कान पकड़ निकल यहां से, पर वो बिचारे, उनको क्या पता मेरे अंदर क्या कपट, क्या क्या कपट है। गुरुजी तो बिचारे बड़े दयालु, कितनी बात कहो बर्फ की शिला बनी हुई, कोई क्रोध आवे ही नहीं। जब जब कोई बात चले तो प्यार से मुझे समझाए। तुम देखो इस संसार में जो जिससे बड़ाई पाता है ना, वो उसी को ही पहले नष्ट करता है। ये धुआं काय से पैदा होता है जी? धुआं आग से पैदा होता है। तो आग से पैदा हुआ धुआं आग को ही खत्म करता है। कैसे? कि धुआं यूं जाता है, धुआं जाकर के आकाश में बदल बनता है, फिर बदल भर के और फिर वो बरसता है, बरसता है तो आग बुझ जाती है। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेही बुझाव घन पदवी पाई। ऐसे ही ये मिट्टी है, ये पैरों में पड़ी रहती है, निरादर को प्राप्त होती है। आवे जो मिट्टी के ऊपर पैर रख के चलते हैं, थूक थूक देते हैं, छिनक देते हैं। परंतु जब उस वो मिट्टी उड़ती है आकाश में, वायु उसको ऊंचा ले जाती है। बिचारी मिट्टी है, सबका लात खाती, इसको ऊंचा ऊंचा ले जाते हैं तो वो मिट्टी उस पवन को ही दबाती है। आज तो भाई बहुत आंधी आ रही है, वायु के एकदम वायु अच्छी नहीं लग रही है, बहुत धूल भरी आ गई। बेचारा पवन देवता बदनाम होता है। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो देखते हैं कि भाई मूर्खों का संग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अधम व्यक्ति यदि हमको मिल गया तो वो प्रेम करे तो नुकसान और जो है वो कलह करे तो नुकसान। इसलिए बताया है शास्त्रों में कि अविवेकी मूर्ख व्यक्ति कुत्ते के समान बताया गया। कैसे? कि कुत्ते का आप लाड करो तो कुत्ता चाटने लग जाएगा। कुत्ता मांसाहारी होता है, वो हमारे यहाँ जीभ लगाएगा और कुत्ते को दूध का रोग तो पिंडी खाएगा। अब क्या करें, दो ही काम होती। तो खलसन कलह न भल नहीं प्रीति, खल के साथ लड़ाई भी अच्छी नहीं तो प्रेम भी अच्छा नहीं। तो खल पर हरिए स्वान की नाई, दुष्ट व्यक्ति होता है उसको कुत्ते की तरह छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जो है कुत्ते से प्रेम करे और न कुत्ते के बराबर आकर के कलह करे। मेरे मन में गुरुजी के प्रति बड़ा कपट भर गया। गुरुजी हित की बात कहें मुझे अच्छी न लगे, मैं भी कहें कुछ नहीं, ऐसे बकते रहते इनका स्वभाव, इतना घमंड आ गया। एक दिन बाबा शंकर के मंदिर में बैठा हुआ था और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, जिसके साथ ओम नमः लगता है ना वो मंत्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय जप कर रहा था। जप करते करते शिवजी का नाम लेते गुरुजी आ गए उधर। गुरुजी आ गए तो मुझे उठना चाहिए, मैं उठा नहीं, बैठा रहा। गुरुजी आए तो आए, मैं शंकर जी का जाप करता हूं। तो गुरुजी तो बेचारे कुछ नहीं बोले, न उनके मन में कोई फर्क पड़ा, अच्छा आ जाए बेटा शिवजी का नाम ले रहा है, बहुत अच्छा। परंतु भगवान शंकर से ये सहा नहीं गया, गुरु का इतना अपमान, जिसके द्वारा तुमको मंत्र मिला उन गुरु का तुमने इतना अपमान किया। वंदन कर निंदा करे ताका मुंह मदीठ, रामदास उस जीव का जम दरगे में दीठ। वंदन कर निंदा करे ताका मुंह मदीठ, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो पहले तो आकर के गुरुजी की वंदना की ऊपर ऊपर, और फिर जो है गुरु मंत्र ले लिया, और अब गुरुजी का इतना तिरस्कार कि आए तो वो खड़े ही नहीं हुए। तो इतनी ज्यादा गुरु की अपमानता शंकर भगवान से सहन नहीं हुई। अब शंकर भगवान ने आकाशवाणी से कह दिया, ए अधम प्राणी, तुझे हमारा मंत्र जपते हुए बड़ा अभिमान हो गया है। अरे ओ दुर्भाग्यशाली, तेरे गुरु के मन में तेरे प्रति कोई क्रोध नहीं आया, वो बिचारे बड़े शुद्ध चित्त वाले बोधवान ब्राह्मण हैं, वे तो तुमको शाप नहीं देते हैं, लेकिन मैं नीति के विरुद्ध कोई काम देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं। यदि मैं तुझे शाप न दूं तो संसार में वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं शाप देते हुए कहता हूं कि जो लोग गुरु के साथ ईर्ष्या रखते हैं वो करोड़ों जन्मों तक नरकों के अंदर पड़े रहते हैं, करोड़ों युगों तक नरकों में, रौरव नरक में पड़े रहते हैं, और वे लोग तिर्यग योनि माने तिर्यग योनियों में पड़े रहते हैं, बार बार शरीर धारण करते रहते हैं, अयुत जन्म भरी पावई पीरा, 10,000 वर्षों तक वे लोग पीड़ा प्राप्त करते हैं, जन्मते मरते उनको पीड़ा होती रहती है। तुम अजगर के समान यहां बैठे रहे, हम तुमको शाप देते हैं कि तू सर्प के समान पड़ा रहेगा, तेरी बुद्धि सर्प के समान अजगर की तरह पड़ा रहे, कहां पड़ेगा, वृक्ष के कोठरे के अंदर पड़ा रहेगा, तो बहुत अधोगति को प्राप्त होगा। सर्प गति में गया हुआ अधोगति मानी जाती है। तब ऐसा हाहाकार मच गया, गुरुजी बिचारे घबराए और मैं भी घबरा गया। तो गुरुजी ने आकर मुझे छाती से, अरे बेटा तुझे बहुत भयंकर साप मिल गया, अरे बेटा मैं रोऊं, अब मिल गया सो तो मिल गया हूं। अब गुरुजी महाराज ने वहां दंडवत प्रणाम किया भगवान शंकर को, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से भगवान शंकर को मनाया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजे हम। देखो ऐसा सुना है किसी से कोई अपराध बन जाए, शिव जी का कोई अपराध बन जाए तो इस शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर से अपने कोई गलती अपराध हो जाए तो इसका पाठ करने से अपराध, भगवान शंकर अपराध धो दे देते हैं। निराकार मंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। हे भगवान व्यापक प्रभु वेद स्वरूप निर्गुण निर्विकल्प निरीह निजानंद में परिपूर्ण आकाश के समान व्यापक आपको मैं प्रणाम करता हूं महाराज, बर्फ के समान आपका एकदम गौर वर्ण है, आपके भाल के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, बड़ा विचित्र रूप है, गले के अंदर सर्प विराजमान है, बालों के अंदर गंगा जी बह रही है, हाथ के अंदर आपके त्रिशूल है, गला आपका नीलकंठ है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, आप कल्प के अंत में सारे संसार को भस्म कर देने वाले हो। हे उमानाथ, जब तक व्यक्ति आपके चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता तब तक उसके संताप नाश नहीं होते और उसको शांति भी नहीं मिलती है। हे प्रभु, संपूर्ण प्राणियों को आप आश्रय देने वाले हो, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। ये रुद्राष्टक है, इसमें 16 पंक्तियां हैं और 8 ये श्लोक है। इसका जो पाठ करता है वह व्यक्ति भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। तो ये उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर के लिए कहा, ए भगवान शंकर तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वो कहने लगे, अरे ओ ब्राह्मण, तुमने हमको खुश कर दिया, कितनी सुंदर तुमने स्तुति गाई, लो वरदान मांगो। तो ब्राह्मण ने अपने लिए नहीं मांगा, पहले तो अपने लिए लौकिक चीज नहीं मांगी, ये खास बात, लौकिक चीज नहीं मांगी। कहा, हे प्रभु, आप दिनों पर कृपा करने वाले हो तो आपके चरणों की भक्ति दीजिए, ये मेरा पहला वरदान है। दूसरा वरदान है महाराज, ये बिचारा जीव, सामान्य जीव, आपकी माया से भूला बिछड़ा, ये कुछ भी कह दिया है प्रभु तो आप इसके ऊपर क्रोध मत कीजिए महाराज, आप कृपा सिंधु है, दीन दयालु है, इस पर कृपा करो महाराज, आपका वरदान, आपका शाप वरदान बन जाए और थोड़े ही काल में आपका शाप का समय समाप्त हो जाए, ऐसी आप कृपा करो। इसका तो अब संसार में कोई दूसरा रक्षा करने वाला है नहीं, आप जब कोप करने लग जाए और उसको शाप दे दे, दूसरा कौन आएगा इसको बचाने के लिए महाराज, आप ही बचा सकते हो। भगवान शंकर ने बात सुनी, भगवान शंकर गदगद हो गए, कह रहे ब्राह्मण, तुम्हारे मन में इतनी दया है, यद्यपि इसने भयंकर पाप किया था मुझे मेरा अपमान सहा जा सकता है, मेरा अपमान करो तो कोई बात नहीं, गुरुदेव का अपमान किया ये मेरे से सहन नहीं होगा, सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्रोध करके और इसको शाप दिया था। तुम्हारी साधुता देखी तो जाओ मैं इसके ऊपर कृपा करता हूं। जो क्षमाशील पुरुष होते हैं, जो दूसरे पर उपकार करने वाले होते हैं, वो मुझे भगवान राम के समान प्यारे लगते हैं। भगवान राम से जिन जिनों ने युद्ध किया उन सब का कल्याण हो गया, रावण का कल्याण कर दिया, खरदूषण का कल्याण कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। मैंने श्राप दे दिया, वो तो देखो व्यर्थ जाएगा नहीं, इसको 1000 जन्म तो मिलेगा ही, जन्म सहस अवश्य है पाई। पर एक बात साथ में कहता हूं, जन्मते और मरते प्राणी को कष्ट बहुत होता है, वो इसको कष्ट नहीं होगा। और किसी भी योनि में जाएगा, इसको जो ज्ञान इसको आज है ये ज्ञान इसका नष्ट नहीं होगा। ए शूद्र मेरे वचनों को सुनो। हां महाराज, तुम्हारा जन्म फिर अयोध्या में होगा, देखो तुम्हारा दो बात है, अयोध्या में तुम्हारा जन्म हुआ है और फिर मेरी तुमने सेवा की है, इन दो कारणों से तुम्हारे अंदर मेरे प्रति भक्ति पैदा, तुम्हारे राम जी में भक्ति पैदा हो जाएगी, ये खास बात है। अयोध्या में तुम्हारा जन्म हुआ और मेरी तुमने सेवा की है, इस कारण से पूरी प्रभाव और अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजे उर तोरे, तेरे मन में राम जी के प्रति भक्ति पैदा होगी। अब मैं एक तुझे ज्ञान की बात बताता हूं, यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। जब ब्राह्मण का अपमान होता है तब समझना चाहिए कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। संत का अपमान मत करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो, चाहे ये हमारे पर कितने ही कुपित हो जाए, इनका कभी अपमान मत करो। तो क्या करें साहब, ब्राह्मण हमारा अपमान करे तो कि सहिष्णु बनो, कहीं तो सहिष्णु होना ही चाहिए ना। जो हमारा अपमान करे हम भी उसका अपमान करेंगे, ये कायदा सब जगह मत लगाओ। सब जगह क्या, ये तो किसी जगह नहीं लगाना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण क्यों, कि ब्राह्मण सब वर्णों में गुरु है, श्रेष्ठ है, वहां से आप सहिष्णु बनना चालू होगे तो सब जगह आप सहिष्णु बन जाओगे। देखो इंद्र का वज्र है वो इतना खराब नहीं है, मेरे त्रिशूल से इतना नुकसान होने वाला नहीं है, भगवान विष्णु के कालदंड से भी नुकसान होने वाला नहीं है, परंतु एक ब्राह्मण के मन में क्रोध पैदा कर दिया, उस क्रोध की आग से जब भस्म हो जाएगा तो फिर वापिस वो और जो है सही रास्ते पर आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस ज्ञान को तुम अपने हृदय में धारण करना। दूसरा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी, सब चीज तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगी। और मैं तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूं कि अप्रतिहत गति हो यही तोरी, तुम्हारी गति कहीं रुकने वाली नहीं है, यहां संसार में सर्वत्र तुम चले जाओगे, जहां कोई नहीं जा सकते वहां पर तुम पहुंच जाओगे। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर के और गुरु महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए, गरुड़ जी महाराज। फिर मुझे गुरु महाराज ने कहा, देख अब की बार तो भगवान शंकर ने कृपा कर दी, आइंदे ध्यान रखना। इस प्रकार से वे अपने घर चले गए और मैं कालचक्र के द्वारा प्रेरित हुआ विंध्याचल पर्वत पर जाकर एक सांप योनि में चला गया, बड़ा विशाल अजगर सांप बन गया। कुछ काल तक वहां रहा, फिर उसके बाद जो भी मुझे शरीर मिले, शरीर मिलता गया, फिर चलता गया, शरीर मिलता गया, मरता गया। जैसे कोई आदमी कपड़े पहनता है, पुराने कपड़े उतारता है, नए कपड़े पहनता है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पशु पक्षी की योनि में गया, देव योनि में गया, मनुष्य योनि में गया, कई योनियों में भटकता रहा। जिस योनि में भी गया, भगवान शंकर की कृपा से मुझे ये घटना याद आती रहती थी। भगवान शंकर की तो याद आती, पर ज्यादा याद मुझे गुरु जी की आती। देखो मुझे कितने कोमल स्वभाव वाले गुरु मिले थे, वही कोमल स्वभाव मुझे उनकी बार बार याद आती। ऐसे करते 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 एक बार मैं ब्राह्मण शरीर में आया। ब्राह्मण शरीर तो बड़ा श्रेष्ठ होता है गरुड़ जी महाराज, देवताओं को भी नहीं मिलता ऐसे ब्राह्मण शरीर। मुझे ब्राह्मण शरीर मिला। अब भगवान राम के प्रति मेरी भक्ति करने के लिए शंकर जी ने आदेश दिया ही था, तो खेलूं तो हूं बालकन मीला। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था, मैं भी छोटा ही बच्चा, तो वहां भगवान की लीला याद करता था। भगवान राम ऐसे करते होंगे, वो छोटे थे तब ऐसे खेलते होंगे, ऐसे में लीला याद, लीला को खेल खेल में करने लगा था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे पढ़ाया। मैं अंदर से सब समझता था, समझाऊ सुनाऊ गुनाऊ, गुणता भी था, समझता भी था, सुनता भी था, सब काम करता था, पर नहीं भावा। उनकी पढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगी यार, ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब। अब देखो गरुड़ जी, मेरे मन में कोई इच्छा तो थी नहीं कि पढ़ाई करेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, या कोई बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण बने हुए तो हैं ही, कर्मकांडी ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसी कोई मेरे मन में इच्छा तो थी नहीं। मेरे इच्छा तो केवल भगवान राम के चरणों में प्रेम होने की। अब बताओ गरुड़ जी महाराज, संसार में ऐसा कौन सा अभागी पुरुष है जो कामधेनु का तो त्याग करे और आंकड़े का दूध पिए। साहब ये कामधेनु है ना, ना ना कामधेनु का दूध नहीं पिएंगे हम। हम तो क्या करेंगे, हम तो आंकड़े का दूध पिएंगे, खरी माने गधी का दूध पिएंगे। हम कामधेनु का दूध नहीं पिएंगे। ऐसी हमारी दशा हुई। मैं भगवान के प्रेम के अंदर मग्न रहता था, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। पिता बिचारे पढ़ा पढ़ाने के लिए थक गए, लेकिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। माँ बाप मर गए, माँ बाप के मरने के बाद मैंने तो घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर रहने लगा और खूब रात दिन भगवान का भजन करने लगा। अब ऋषि मुनियों के आश्रम तो जंगलों में रहते ही थे, अच्छे अच्छे ऋषियों के वहां चला जाता और कहता मुझे आप राम कथा सुनाओ, मुझे आप राम कथा सुनाओ, तो वो मुझे राम कथा सुनाते थे। भगवान ने ऐसी, शंकर भगवान ने ऐसी कृपा तो की थी, कहा कि तुम कहीं नहीं रुक पाओगे। तो मैंने देखा कि राम कथा सबसे ज्यादा कहाँ होती होगी। ऐसे मैं लोगों से पूछता रहा, पूछते 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 मेरु शिखर बट छाया, मैं सुमेरु पर्वत पर आ गया। अब मेरी भी देखो ये क्या बताएं, क्या इच्छा, भगवान की इच्छा होने लगी ना, तो ये तीन प्रकार की इच्छा मेरी नष्ट हो गई, पुत्रेष्णा लोकेष्णा और वित्तेष्णा। तीन इच्छा प्रबल होती है, एक तो परिवार की इच्छा हो पुत्रेष्णा, एक मान बढ़ाई की इच्छा और एक धन की इच्छा, तीन इच्छा बड़ी प्रबल होती है। तीनों इच्छा मेरी तो खत्म हो गई, परंतु एक मेरे बीमारी हो गई। क्या, मुझे निर्गुण की बात अच्छी नहीं लगती, बस सगुण सुनाओ तो सगुण सुनाओ, बस सगुण सुनाओ, ये सगुण की मेरे धुन चढ़ गई और निर्गुण की बात अच्छी नहीं लगती। गुरुजी ने हमको कह दिया था कि देखो भाई भगवान राम में प्रेम रखना, तो मैं राम जी का क्षण क्षण में नाम ले हूं, उनकी लीला का स्मरण करूं। तो मैं सुमेरु पर्वत पर आया, यहां लोमस ऋषि महाराज को देखा, लोमस ऋषि को। आहा लोमस ऋषि खूब बाढ़ होंगे, ये लोमस ऋषि थे ना, ये ब्रह्मा जी के बेटा थे लोमस, लोमस माने ये बाल ही बाल, उनके दर्शन कोई करी नहीं, बाल थाए गई। लोमस ऋषि की बात आती है कि लोमस ऋषि एक बार बैठे हुए थे, तो गर्मी पड़ रही थी जेठ आषाढ़ की ना, तो ये बाजरी का इनका पूड़ा लेकर के और यूं बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर, सूर्य यहां पर तपता है, देखो यहां गर्मी लगती है सूर्य को, यदि ये हिसाब बंधा हुआ है ना, कपड़े से ढका हुआ है और बाकी सारा वदन खुला है, सूर्य की गर्मी इतनी नहीं, और सब जगह ढका हुआ है, ये खुला रहेगा तो सूर्य की गर्मी का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, घास फूस का पूड़ा लेकर के यूं बैठ करके बैठ गए, भगवान का भजन कर रहे थे। इतने में कई महात्मा आए लोमस ऋषि का दर्शन करने के लिए, आए आइए आइए महात्मा जी आइए पधारो बैठो। क्यों महाराज, एक बात पूछनी है, बोलो। ये आप ये पूड़ा लेकर के क्यों बैठे हैं, हम आपको झोपड़ी बनवा दे रहे हैं। नहीं जी, क्यों झोपड़ी बनवाओ जी, तो थोड़ा सा जीना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा जीना है। अब उसके लिए कौन झोपड़ा झोपड़ी बना है, आफत मोल करे तो महाराज, थोड़ा सा कितना है, कोई आजकल की बात है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा जीना है, तो थोड़ा भी कितना, अब देखो हमारी आयु सुन लो, बताओ महाराज। ये 1000 चतुर्युगी बीतती है, 1000 चतुर्युगी का दिन होता है ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युगी की रात होती है। ऐसे रात से, रात दिन से महीना बनाओ, महीने से वर्ष बनाओ, और 100 वर्ष आते हैं तब ब्रह्मा जी मरते हैं, तो मेरे बाप रह गए, बाप मरे तो मुंडन होना चाहिए ना, तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी तो मरते ही रहते हैं, एक एक बाल में उखाड़ देता हूं, एक ब्रह्मा मरा तो एक बाल उखाड़ा और रख दिया। अब ये इतनी टांची पड़ी है ना, ये इतने बाल मेरे उड़े, अभी ये सारे बाल उड़ जाएंगे तब मर जाएंगे। अब थोड़े दिन के लिए, थोड़े से जीने के लिए कौन बताओ कुटिया बनाए, थोड़े से जीने के लिए। ऐसे लोमस ऋषि, अपने तो भाई कोई पता ही नहीं है कब जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, लेकिन काम ऐसे है, कल्पांत नासन गुमान ईसा। तो लोमस ऋषि वहां पर बैठे हुए मेरु सुमेरु पर्वत पर, मैं उनके चरणों में गया, चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम किया, प्रणाम के बिचारे लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के और बड़े कह रहे, ब्राह्मण देवता तुम यहां कैसे आ गए, ये स्थल तो हर किसी के लिए दुर्गम है, सुमेरु पर्वत पर आ जाना, ओहो तो तुम किस कारण से आए भाई बताओ। तो मैं उन गुरु महाराज के दर्शन करके, माने लोमस ऋषि के दर्शन करके बड़ा आनंद में डूबा, और गुरु ने, लोमस ऋषि ने इतने सम्मान से सत्कार से मुझे पूछा, तो मेरा मन खूब आनंद में डूब गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब लोमस ऋषि जी ने पूछ ही लिया कि तुम क्यों आए हो, तो अब मैं ये सारी बात कल की कथा में कह पाऊंगा, बड़ी विचित्र कथा है। मोई सादर पूछत भय द्विज आयो कही काज, किस कारण से आए। अब इनका संवाद लोमस ऋषि का, और इनका संवाद चलेगा काकभूषण जी का। काकभूषण जी का कैसे जन्म हुआ हो ये बता रहे हैं राम। Rama Shri Rama Rama Shri Rama 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 Shri Rama 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 Shri
राम श्री राम 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 सीतारा
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम 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 सीताराम
राम श्री राम 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 सीताराम
राम श्री राम राम श्री राम
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 राम श्री राम 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 सीताराम
राम श्री राम 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 सीताराम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री राम 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 सीताराम
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 सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
उमापति महादेव की
जय
पवन सुत हनुमान की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
भक्तवत्सल भगवान की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय जय।